नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, स्टीव स्विंग की गेम फील। गेम डिजाइन पर केंद्रित एक विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक पुस्तक है जो उस अनुभव को समझाती है जिसे खिलाड़ी अक्सर किसी खेल के कंट्रोल के भारी, हल्के, तेज, सटीक या संतोषजनक लगने के रूप में बयान करते हैं। पुस्तक का विषय कहानी, दृश्य कला या केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। इसका केंद्र वास्तविक समय में खिलाड़ी के इनपुट, स्क्रीन पर आभासी वस्तु की प्रतिक्रिया और उस प्रतिक्रिया को प्रभावशाली बनाने वाले संकेतों का संबंध है। स्विंग गेम फील को डिजाइन की एक छिपी हुई भाषा मानते हैं जिसे सामान्यतः अंतर्ज्ञान से संभाला जाता है और जिसका निरीक्षण, वर्णन और परीक्षण किया जा सकता है। पुस्तक नियंत्रण, गति, प्रतिक्रिया, ध्वनि, रूपक और खिलाड़ी की धारणा जैसे पक्षों को जोड़ती है। उदाहरणों तथा केस स्टडी के माध्यम से यह दिखाती है कि छोटे तकनीकी निर्णय खिलाड़ी के नियंत्रण बोध को कैसे बदलते हैं। इसका उद्देश्य डिजाइनरों को बेहतर शब्दावली और प्रयोग की ऐसी प्रक्रिया देना है जिससे वे खेल की मूल क्रिया को अधिक स्पष्ट, विश्वसनीय और आनंददायक बना सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, गेम फील को आभासी वस्तु पर वास्तविक समय के नियंत्रण के रूप में समझना। पुस्तक का मूल योगदान गेम फील को धुंधले विशेषणों तक सीमित न रखकर एक कामकाजी परिभाषा देना है। स्विंग के अनुसार यह मुख्यतः सिम्युलेटेड स्थान में आभासी वस्तुओं का वास्तविक समय नियंत्रण है जिसमें परिष्करण के माध्यम से अंतःक्रिया को उभारा जाता है। इसलिए किसी खेल का फील केवल यह नहीं कि खिलाड़ी उसे पसंद करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि बटन दबाने और पात्र, वाहन या वस्तु की हरकत के बीच संबंध कैसा अनुभव होता है। क्या हरकत तुरंत शुरू होती है, क्या रुकना नियंत्रित लगता है, क्या दिशा बदलना अपेक्षित है और क्या टकराव समझ में आता है। यह दृष्टि खेल के कथानक, अंक, स्तर रचना और भव्य ग्राफिक्स से पहले उसकी आधारभूत क्रिया की जांच करने को कहती है। यदि केवल चलना, कूदना या किसी वस्तु को धकेलना ही नीरस या अस्पष्ट है तो बाहरी सजावट उस कमी को पूरी तरह नहीं भर सकती। पुस्तक इसीलिए गेम फील को खासकर स्थानिक खेलों के संदर्भ में देखती है जहां गति और भौतिक अंतःक्रिया सीधे खिलाड़ी के शरीरगत अनुभव से जुड़ती है। यह सीमा उपयोगी है क्योंकि इससे डिजाइनर किसी अमूर्त लक्ष्य के बजाय परीक्षण योग्य नियंत्रण अनुभव पर काम कर सकता है। दूसरा, इनपुट नियंत्रण और प्रतिक्रिया के बीच की श्रृंखला का सूक्ष्म डिजाइन। स्विंग यह स्पष्ट करते हैं कि अच्छा फील किसी एक सुंदर एनिमेशन या तेज फ्रेम दर का परिणाम नहीं होता। यह एक श्रृंखला है जिसमें खिलाड़ी का इनपुट, खेल द्वारा उसकी व्याख्या, वस्तु की गति और तत्काल प्रतिपुष्टि परस्पर जुड़े होते हैं। इस श्रृंखला में देरी, त्वरण, मंदन, दिशा परिवर्तन और नियंत्रण की संवेदनशीलता जैसे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कूप की ऊंचाई अकेले पर्याप्त माप नहीं है। कूद शुरू होने की तत्परता, हवा में दिशा बदलने की क्षमता, उतरने की स्पष्टता और दोबारा कूदने की तैयारी सभी मिलकर अनुभव बनाते हैं। पुस्तक के विश्लेषण का लाभ यह है कि वह फील को केवल व्यक्तिगत स्वाद नहीं मानती। डिजाइनर अलग अलग चर बदलकर देख सकता है कि कौन सा बदलाव खिलाड़ी को वस्तु पर अधिक अधिकार देता है या उसे वस्तु के भारी, फिसलन भरे अथवा प्रत्युत्तरहीन होने का आभास कराता है। नियंत्रण की यह बारीकी संतुलन से अलग विषय है। कोई क्रिया खेल की कठिनाई के हिसाब से संतुलित हो सकती है, फिर भी चलाने में खराब लग सकती है। स्विंग का ढांचा इस अंतर को पहचानने और पुनरावृत्त परीक्षण द्वारा सुधारने में सहायता देता है। तीसरा, ध्वनि, दृश्य संकेत और रूपक से नियंत्रण को अर्थपूर्ण बनाना। गेम फील का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि खिलाड़ी केवल गति के गणित को अनुभव नहीं करता, वह ध्वनि, दृश्य प्रभाव, कैमरा, एनिमेशन और अन्य सहायक संकेतों के आधार पर क्रिया का अर्थ भी ग्रहण करता है। पुस्तक इन तत्वों को मुख्य नियंत्रण का विकल्प नहीं बल्कि उसकी अनुभूति को मजबूत करने वाले घटक मानती है। किसी प्रहार, छलांग या टकराव में सही समय पर ध्वनि और दृश्य प्रतिक्रिया खिलाड़ी को यह समझने में मदद करती है कि उसकी क्रिया दर्ज हुई, उसका प्रभाव पड़ा और खेल की दुनिया ने जवाब दिया। इसी तरह रूपक उपयोगी है क्योंकि खिलाड़ी वास्तविक दुनिया के अनुभवों से डिजिटल हरकत का अनुमान लगाता है। किसी वस्तु का भार, उछाल या सतह पर फिसलना प्रत्यक्ष भौतिक यथार्थ के बजाय ऐसे संकेतों से विश्वसनीय बन सकता है, लेकिन परिष्करण की सीमा भी है। चमकदार प्रभाव खराब प्रतिक्रिया समय या अस्पष्ट नियंत्रण को नहीं छिपा सकते। पुस्तक का निहित व्यावहारिक नियम यह है कि पहले इनपुट और वस्तु की प्रतिक्रिया को समझने योग्य बनाया जाए, फिर सहायक संकेतों से उसे पढ़ने योग्य और संतोषजनक बनाया जाए। इस तरह ध्वनि और दृश्य सजावट नहीं रहते बल्कि खिलाड़ी और खेल के बीच संचार का हिस्सा बनते हैं। चौथा, प्रोप्रियोसेप्शन और अवतार के साथ खिलाड़ी के विस्तार का विचार। स्विंक की चर्चा का अधिक वैचारिक भाग खिलाड़ी के शरीरगत बोध और स्क्रीन पर मौजूद अवतार के संबंध से जुड़ा है। वास्तविक जीवन में मनुष्य बिना लगातार देखे भी अपने अंगों की स्थिति और गति का अनुमान लगाता है। इस शरीरगत अनुभूति को प्रोप्रियोसेप्शन कहा जाता है। पुस्तक इस विचार का उपयोग यह समझाने के लिए करती है कि खिलाड़ी किसी नियंत्रित आभासी वस्तु को अपने कार्य का विस्तार क्यों महसूस कर सकता है। जब इनपुट, गति और प्रतिपुष्टि लगातार तथा अनुमान योग्य हों, तो खिलाड़ी केवल आदेश नहीं दे रहा होता, बल्कि वस्तु की संभावनाओं को सीख रहा होता है। वह जानने लगता है कि कितनी दूरी पार होगी, मोड़ कितनी तेजी से होगा या किसी बाधा से बचने के लिए कब क्रिया करनी है। यही सीखा हुआ अनुमान दक्षता और तल्लीनता दोनों को बढ़ाता है। इस ढांचे की अकादमिक व्याख्याओं पर बहस संभव है, विशेषकर स्वयं के विस्तार संबंधी व्यापक दावों पर। फिर भी डिजाइन के स्तर पर इसका मूल्य ठोस है। यह डिजाइनर को याद दिलाता है कि नियंत्रण केवल आदेश देने का माध्यम नहीं, खिलाड़ी के पूर्वानुमान और सीखने का संवेदनात्मक तंत्र है। इसलिए असंगत नियम या अस्पष्ट प्रतिक्रिया खिलाड़ी के कौशल बोध को कमजोर कर सकते हैं। अंत में माप, केस स्टडी और प्लेसक के जरिए फील को परीक्षण योग्य बनाना। पुस्तक की व्यावहारिक विशेषता यह है कि वह गेम फील पर चर्चा को केवल आलोचनात्मक भाषा तक नहीं छोड़ती। स्विंग अलग अलग खेलों के उदाहरणों और केस स्टडी के माध्यम से दिखाते हैं कि गति तथा नियंत्रण के गुणों की तुलना कैसे की जा सकती है। सुपर मारियो 64 जैसे प्रसिद्ध स्थानीय खेलों के संदर्भ से यह समझ आता है कि एक ही साधारण क्रिया जैसे कूदना अलग नियमों और प्रतिक्रिया के कारण अलग अनुभव दे सकती है। गति के ग्राफ और चर पर ध्यान डिजाइनर को अंतर्ज्ञान के साथ निरीक्षण भी करने देता है। पुस्तक से संबद्ध प्लेसेट और प्ले पैलेट की अवधारणा इसी प्रयोगशीलता को आगे बढ़ाती है। इनमें चर बदलकर परिणाम को महसूस करने का लक्ष्य है, ताकि डिजाइनर केवल पढ़े नहीं बल्कि नियंत्रण के फल को प्रत्यक्ष अनुभव करे। यह तरीका विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि फील की समस्या अक्सर भाषा में पकड़ना कठिन होती है। फिर भी पुस्तक कोई सार्वभौमिक नुस्खा नहीं देती। किसी खेल के उद्देश्य के अनुसार भारीपन, ढीलापन या तीक्ष्णता उचित हो सकती है। इसका वास्तविक पाठ यह है कि वांछित अनुभूति स्पष्ट की जाए, छोटे परिवर्तनों का परीक्षण हो और खिलाड़ी की क्रिया के आधार पर निरंतर संशोधन किया जाए। निष्कर्ष में, गेम फील उन गेम डिजाइनरों, प्रोग्रामरों, तकनीकी कलाकारों और विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी है जो यह समझना चाहते हैं कि एक खेल का मूल नियंत्रण संतोषजनक क्यों लगता है या क्यों नहीं लगता। विशेषकर चरित्र नियंत्रण, प्लेटफॉर्मिंग, वाहन, एक्शन अथवा भौतिक अंतःक्रिया बनाने वाले डेवलपर इससे लाभ पाएंगे। पुस्तक पढ़ने के बाद पाठक के पास भारी, हल्का, फिसलन भरा और प्रत्युत्तरशील जैसे सामान्य शब्दों के पीछे मौजूद डिजाइन निर्णयों को देखने की बेहतर भाषा होती है। वह इनपुट की देरी, गति के व्यवहार, संकेतों और खिलाड़ी के अनुमान के बीच संबंध को अलग अलग जान सकता है। यह लाभ केवल नई परियोजनाओं में नहीं, मौजूदा प्रोटोटाइप की समस्या पहचानने में भी काम आता है। समान श्रेणी की अनेक गेम डिजाइन पुस्तकें नियमों, स्तरों, कथानक, अर्थव्यवस्था या खिलाड़ी प्रेरणा पर अधिक ध्यान देती है। स्विंग की पुस्तक का विशिष्ट स्थान उस क्षण पर केंद्रित होने में है जब खिलाड़ी बटन दबाता है और खेल प्रतिक्रिया देता है। यह उस सूक्ष्म, अक्सर उपेक्षित स्तर को गंभीर अध्ययन का विषय बनाती है। इसकी कुछ वैचारिक व्याख्याएं पूर्ण अकादमिक सिद्धांत की तरह निर्विवाद नहीं मानी जा सकती और कुछ पाठकों को इसकी पुनरावृत्ति अधिक लग सकती है। फिर भी इसका मुख्य बल व्यावहारिक अवलोकन, साझा शब्दावली और प्रयोग पर है। इसी कारण यह केवल प्रेरक सलाह नहीं देती बल्कि टीमों को नियंत्रण अनुभव पर अधिक सटीक बातचीत और पुनरावृत्ति की दिशा देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीव स्विंक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।